Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shvetashvatara Upanishad, presented by Swami Sri Deranandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Shvetashvatara Upanishad, Chautha Adhyay, Chaudhava Mantra. Mantra ki bhumika hai. परस्य अति सूक्ष्मत्वं जगत चक्रे साक्षित्वेन अवस्थितत्वं निखिल जगत सृष्टित्वं सर्व आत्मकत्वं तत्तादात्म्याद् जनानां मुक्तिः च इति एतद् बहुशः अदस्तात् प्रतिपादितं यद्यपि तथापि बुद्धि सौकर्यार्थम पुनः अपि आह। हेडिंग दिया था परमात्म ज्ञान से शांति की प्राप्ति और बंधन का नाश। परस्य आगे यद्यपि तथापि है, तो यद्यपि परस्य माने परमात्मा का अति सूक्ष्मत्वं विशेषण दे रहे। परमात्मा कैसे हैं? अति सूक्ष्म है। और कैसे हैं? जगत चक्रे साक्षित्वेन अवस्थितत्वम्, पूरे के पूरे ब्रह्मांड में, जगत में साक्षी के रूप में स्थित है। और कैसे हैं? निखिल जगत सृष्टित्वम्, संपूर्ण जगत के निर्माता है। और विशेषण देते हैं सर्व आत्मकत्वम्, वे सभी की आत्मा हैं। और कैसे हैं? तत्तादात्म्याद् जनानां मुक्तिः, उसी के तादात्म्य ज्ञान से सभी जीवों की मुक्ति होती है। इति एतद्, इस प्रकार, बहुशः माने अनेक बार अनेक प्रकार से, अदस्तात् प्रतिपादितम्, अदस्तात सीधा सीधा नीचे होता है, लेकिन अदस्तात माने पहले पूर्व में कई बार प्रतिपादन किया गया है। माने इस प्रकार जो परमात्मा है, इस परमात्मा का पूर्व में अनेक प्रकार से प्रतिपादन किया गया है। यद्यपि तथापि तो भी बुद्धि सौकर्य अर्थम पुनरपि आह, बुद्धि में सुगमता से वह परब्रह्म समझ में आ जाए, इसलिए श्रुति माता और भी कहती हैं, क्योंकि श्रुति माता का काम ही है एन केन प्रकारेण जीव को समझ में आ जाए। सूक्ष्माति सूक्ष्मं कलिलस्य मध्ये विश्वस्य सृष्टारमनेकरूपम् विश्वस्यैकं परिवेष्टितारम् ज्ञात्वा शिवं शान्तिमत्यन्तमेति। सूक्ष्माति सूक्ष्मं कलिलस्य मध्ये विश्वस्य सृष्टारमनेकरूपम् विश्वस्यैकं परिवेष्टितारम् ज्ञात्वा शिवं शान्तिमत्यन्तमेति। सूक्ष्म अतिसूक्ष्मं कलिलस्य मध्ये विश्वस्य स्रष्टारं अनेकरूपं विश्वस्य एकं परिवेष्टितारं ज्ञात्वा शिवं शान्तिम् अत्यन्तम् इति। श्रुति माता कह रहे हैं सूक्ष्म अतिसूक्ष्मं कलिलस्य मध्यः, पूर्व में जो विशेषण दे दिए, कई विशेषण, इन सब विशेषणों से युक्त जो परमात्मा है वह परमात्मा का है तो बोले सूक्ष्म अति सूक्ष्म है और वह कलिल के मध्य है। कलिल का अर्थ अपना जो स्वरूप का अज्ञान अविद्या है ये है, और टीका में अनेक प्रकार से दिए हैं और पूर्व में उपनिषद में कलिल का अर्थ आप लोगों ने बहुत सुन चुके हैं तो टीका में भी दिए हुए हिंदी में, तो उसके ऊपर समय ना बर्बाद करते हुए कलिल भाष्य के अनुसार अज्ञान अविद्या दे दिया। इस अविद्या के मध्य में विद्यमान है और ये कैसे है, विश्वस्य सृष्टारम अनेक रूपम, ठीक है पूरे विश्व का ये निर्माता है। कैसे निर्माण करते है, अनेक रूपम एको अहम बहुशाम, स्वयं निर्माण करते हैं और अनेक रूप में अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, अर्थात उपादान उपादे निमित्त नैमित्तिक जितने चाहे उतने उपाधि के भेद से वे ही बनते हैं। विश्वस्य एकम परिवेष्टितारम, एक ही विश्व के पूरे विश्व को परिवेष्टितार एक होते हुए पूरे जगत को घेरे हुए हैं, अर्थात इनकी सत्ता के भार कोई पदार्थ नहीं है, सभी इनके भीतर आते हैं। जैसे इस कपड़े से मेरा शरीर परिचिन्न है तो शरीर इस कपड़े से वेष्टित है, इसी प्रकार पूरा का पूरा ब्रह्मांड उसके द्वारा वेष्टित है। मनुष्य की सत्ता ज्यादा है और विश्व की सत्ता कम है, क्योंकि विश्व की सत्ता तो एक ही पाद है और ये तिष्ठत दशांगुलम भार भी इतने व्यापक है, इसलिए पूरे को ये वेष्टित किए हुए हैं। ऐसे शिवम ज्ञात्वा, इस प्रकार शिव को जानकर अत्यंतम शांतिम एति, जो साधक इस शिव को इस प्रकार शिव को इतने विशेषण से युक्त शिव को जानता है वह अत्यंत शांति को अत्यंत निरंतर सुख को आनंद को प्राप्त होता है। सूक्ष्म इति, अभी सूक्ष्म ऊपर से तो बोल दिया लेकिन सूक्ष्म कैसा है, क्या सूक्ष्म है, इस प्रकार थोड़ा तो ज्ञान होना चाहिए, केवल सूक्ष्म सूक्ष्म बोलने से तो नहीं चलेगा। तो भाष्यकार सूक्ष्म की अति सूक्ष्म की आदि व्याख्या करते हैं। प्रतिव्याधि अव्याकृतांतम उत्तर उत्तरम सूक्ष्म सूक्ष्मतरम, प्रतिव्याधि अव्याकृतांत, जो स्थूल भूत है पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये पंचीकृत पंच महाभूत है, इनके अपेक्षा सूक्ष्म उनकी पंच तन्मात्र है, पंच तन्मात्रा से भी सूक्ष्म अहंकार है, अहंकार से भी सूक्ष्म महतत्व है, महतत्व से भी सूक्ष्म प्रकृति है। बस यहां तक आएगा प्रकृति मनी माया समष्टि, इवन एक से एक अपेक्षा से सूक्ष्म सूक्ष्म होते जा रहा है, सूक्ष्म सूक्ष्मतर सूक्ष्म सूक्ष्मतर, और सबसे तर अपेक्षया ये जो प्रकृति से लेकर मैंने अव्याकृत मैंने प्रकृति प्रकृति से अव्याकृत से लेकर पृथ्वी तक ये सूक्ष्म और सूक्ष्मतर है, क्यों स्थूल और सूक्ष्म दो इसमें हो सकते हैं, किंतु इससे भी पर तीसरी डिग्री गुड बेटर बेस्ट सूक्ष्म सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम, तो सूक्ष्मतम कौन है, ईश्वरस्य तद अपेक्षया सूक्ष्मतमत्वम, ईश्वर जो है इनकी अपेक्षा भी सूक्ष्मतम है, अर्थात इसके साथ कोई क्या बराबरी नहीं करते, कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। प्रकृति से लेकर अव्याकृत तक इनमें कुछ ना कुछ तारतम्य हो सकता है लेकिन इसके साथ तारतम्य नहीं होता है, क्योंकि दूसरी कोई वस्तु हो तब तारतम्य ना, पृथ्वी से लेकर अव्याकृत तक वस्तुएं हैं इसलिए इनमें तारतम्य भाव होता है, किंतु इसके साथ दूसरा कोई वस्तु ही नहीं है तो तारतम्य नहीं है। सूक्ष्मतमत्वम अह सूक्ष्माति सूक्ष्मम इति, फिर ऐसा कहां रहता है, कलिलस्य का अर्थ करते हैं अविद्या अव्याकृत अव्याकृत, जैसे एक होता है व्याकृत और एक होता है अव्याकृत। व्याकृत का अर्थ है प्रगट, अव्याकृत का अर्थ है अप्रगट। तो अभी अप्रगट कौन है? हमें तो केवल पंचकृत पंचकृत पंच महाभूति तो व्यक्त है, इसके अलावा अपंचीकृत पंच महाभूत, इनकी तन्मात्राएं, अहंकार, महतत्व, प्रकृति, ये सब अव्यक्त ही है। इसलिए व्यक्त और अव्याकृत। अव्याकृत माने नहीं, मैंने क्या कहा, इनमें तारतम्य होता यहां से लेकर वहां तक, एक के अपेक्षा एक, एक के अपेक्षा एक कर सकते हैं, वहां तक जाते हैं। अब इन दोनों के मतलब इनमें तारतम्य, एक की अपेक्षा एक की अपेक्षा एक, माने कार्य की अपेक्षा कारण सूक्ष्म है, फिर वो भी तो किसी का कारण जो बन रहा वो भी तो कार्य है, फिर उसकी अपेक्षा वो हो सकता है। इस प्रकार कहां तक जाते हैं? प्रकृति तक जाते हैं, माने कारण को लेकर प्रत्येक कार्य कारण हो जाता है। बोले प्रकृति किसी का कार्य नहीं है, बीच में कार्य कारण आता है, जैसे प्रकृति मात्र कारण है और आगे पंच महाभूत मात्र कार्य, लेकिन बीच में महतत्व, अहंकार, पंच तन्मात्राएं, इनमें कार्य कारण भाव होता है, इसलिए इनको बोल सकते हैं कि एक के अपेक्षा एक अव्याकृत होता है। कलिलस्य अविद्या तत्कार्यात्मक दुर्गस्य गहनस्य मध्ये, कलिल का अर्थ यही करते हैं जो अविद्या है और उसका कार्य रूप जो दुर्ग मानी किला है, वो किला कौन सा है? यही शरीर ही बहुत बड़ा किला है, और इसी के मध्य में, एक किले के मध्य में, जैसे कोई फैक्ट्री हो और फैक्ट्री में मालिक छुपके बैठता है, कुछ पता ही चलता नहीं, और वहां बैठकर सब फैक्ट्री में क्या चल रहा है वो देखते रहता है, लेकिन उसको कोई देख नहीं सकता। जैसे गाड़ी में ऐसे कांच है, भीतर से बैठकर तो देख रहे हैं लेकिन बाहर का कोई देखता नहीं है, इस प्रकार गहन इसमें छिपा हुआ है। शेषम व्याख्यातम अर्थात दूसरे शब्दों की व्याख्या पूर्व में हो गई है। 15वें की भूमिका दे रहे, परस्य साक्षी रूपेण अवस्थितत्वम, पर माने परमात्मा साक्षी रूप से स्थित है, और कैसे हैं? सनकादि भी ही प्राप्यत्वम, ये अन्वय लगेगा, माने सनकादि के द्वारा वह प्राप्य है। जैसे वह प्रत्येक की जवाबदारी, कर्तव्य, ड्यूटी, ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारा कर्तव्य है, इसी प्रकार सभी का प्राप्तव्य कौन है? वह परस्य साक्षी रूपेण अवश्य, जो परमात्मा सभी में साक्षी रूप से स्थित है वही सभी का प्राप्तव्य है। जैसा सभी नदियों का प्राप्तव्य क्या है? सागर है, क्यों? वह उसका उद्गम स्वरूप स्थान, अपना स्वरूप है, माने समुद्र सभी नदियों का स्वरूप है, और स्वरूप को ही प्राप्त करने का एकमात्र कर्तव्य है, वही प्राप्तव्य है। इसी प्रकार साक्षी रूप में सब में रहने वाले परमात्मा सनकादि के द्वारा प्राप्तव्य है, ब्रह्मादि देव ही और ब्रह्मादि देवताओं के द्वारा भी प्राप्तव्य है, अधिकारी पुरुष ही, अधिकारी का अर्थ फिर अपना पूरे हिरण्यगर्भादि जितने भी आते हैं सभी को अधिकारी पुरुष माने अपने मंत्रिमंडल के सदस्य को बोलते हैं ना, कार्य अधिकारी पुरुष है ये लोग। बिना अधिकारी पुरुषों के कोई अपना रोड पर किसी को ट्रैफिक रोकते नहीं है, लेकिन अधिकारी पुरुष आ रहे तो सबको रोकते और उनको जाने देते हैं। इसी प्रकार अधिकारी पुरुषों के द्वारा भी ये प्राप्तव्य है, आत्मतया प्राप्तव्य, ये सभी इनका परमात्मा आत्मा ये है, स्वरूप ये है, इसलिए अपना स्वरूप प्राप्तव्य रूप में है। साधन चतुष्टयादि, साधन चतुष्टयादि युतः अस्मदादि नाम मोक्ष सिद्धिम चाह, और हम लोग सामान्य जो मनुष्य कोटि में हैं, क्योंकि वो देवता आदि कोटि में है, ऋषि आदि कोटि में है, अधिकारी आदि कोटि में है, लेकिन सामान्य हम लोग मनुष्य कोटि में है, तो मनुष्य के लिए वो प्राप्तव्य है क्या? नहीं, वहां बोलते मनुष्य भी अस्मदादि नाम माने हम लोगों को भी साधन चतुष्टयादि युतम, हम लोग भी यदि साधन चतुष्टय संपन्न बनते हैं तो हम लोगों को भी वो मोक्ष देने में सक्षम है, मोक्ष सिद्धि के लिए उनकी प्रार्थना करते हैं, मैंने सभी के सभी। स एव काले भुवनस्य गोप्ता विश्वाधिप सर्वभूतेषु गूढः यस्मिन् युक्ता ब्रह्मरसयो देवताश्च तमेव ज्ञात्वा मृत्युपाशांश्चिनत्ति स एव काले भुवनस्य गोप्ता विश्वाधिप सर्वभूतेषु गूढः यस्मिन् युक्ता ब्रह्मरसयो देवताश्च तमेव ज्ञात्वा मृत्युपाशांश्चिनत्ति स एव काले भुवनस्य गोप्ता विश्व अधिपः सर्वभूतेषु गूढः यस्मिन् युक्ता ब्रह्मर्षयः देवताः च तम एव ज्ञात्वा मृत्युपाशान् छिनत्ति स एव मने वही परमात्मा स एव वही परमात्मा काले भुवनस्य गोप्ताः काले का अर्थ करते हैं पूर्व कल्प में कई कल्प होते हैं तो इस कल्प के पूर्व कल्प में आदि क्या करते हैं वे परमात्मा भुवनस्य गोप्ता विश्व का रक्षण करते थे भुवनस्य गोप्ता रक्षक था क्योंकि गोप्ता थोड़ी सी भविष्य काल की क्रिया होती है तो वे पूर्व काल में पूरे विश्व के रक्षक थे रक्षक था विश्वाधिपः विश्व के स्वामी सर्वभूतेषु गूढः सभी प्राणियों में अंतर्यामी रूप से विद्यमान है यस्मिन् युक्ताः उसी परमात्मा में यस्मिन् परमात्मा में युक्त है अर्थात तादात्म्य से अभेद रूप से एक रूप से विद्यमान है कौन ब्रह्मर्षया देवताश्च ये ब्रह्मर्षि देवता हमेशा उस अपने प्राप्तव्य के साथ अभेद रूप से रहते हैं ऐसे परमात्मा को तम एव माने ऐसे परमात्मा को ज्ञात्वा मृत्युपाशान छिनत्ति मृत्यु रूप की जो पाश है उसको काट दिया जाता है स एव स का अर्थ करते हैं स एव प्रकृतः जो प्रकृत परमात्मा चल रहे हैं जो अनेक विशेषणों से युक्त अभी अभी पूर्व में कहा हुआ उसको बोलते हैं प्रकृत काले का अर्थ करते हैं अतीत कल्पेषु पूर्व कल्प में जीव संचित कर्म परिपाक समये जीव संचित माने तत्त्व जीव का जो संचित कर्म है संचित कर्म का परिपाक कर्म का परिपाक माने कर्म जब फल देने के लिए उन्मुख होता है तैयार होता है तब उसको बोलते हैं कर्म परिपाक तो कर्म परिपाक के समय में क्या करते हैं तत्त कर्म अनुगुणतया रक्षिता भुवन गोप्ता का भुवनस्य गोप्ता है मैंने उस समय में सभी विश्व के रक्षा करते हैं रक्षिता है कैसे तत्त कर्मानुगुणतया रक्षिता माने उन सभी जीवों को अपने अपने किए हुए कर्मों के अनुसार फल देते हुए रक्षण करते ये ऐसा क्यों कहा ऐसा यदि नहीं कहते तो कृत प्रणाश और अकृत अभ्यागम दोष आने की संभावना होती है जैसा किसी ने कर्म किया और कर्म के ने करने के बाद में उसको फल ही नहीं मिला तो इसको बोलते हैं कृत प्रणाश जो किए हुए कर्म का फल न मिलना अकृत प्रणाश है और कर्म करने पर क्या बोलते कर्म कर, हाँ एक क्या बोलते कर्म करने पर एक कर्म का फल नहीं मिलता तो कृत प्रणाश, कर्म किया और कर्म का फल नहीं मिलना तो इसका कृत का नाश नहीं मिला, और बिना कर्म किए ही फल मिलना अकृत अभ्यागम, अभ्यागम माने प्राप्त होना, माने इस प्रकार से वैषम्य निर्गृण्य आदि दोष आते हैं, इन दोषों को न आ जाए, इन दोषों की निवृत्ति के लिए यहां पर ऐसा दे दिया विश्वस्य गोप्ता, माने विश्व में रहने वाले उन उन जीवों को जैसे जैसे कर्म किए हैं वैसे वैसे वो फल देता है, किसी को ना कम ना किसी को ज्यादा, अर्थात किसी ने काम किया ही नहीं है उसको नहीं देते हैं और किया है उसको नहीं देते ऐसे भी नहीं है, सब प्रकार से जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, इस न्याय से यहाँ पर विश्व के गोपता है। विश्वाधिपः विश्वस्य स्वामी, ठीक, सर्वभूतेषु गूढ़ का अर्थ करते हैं, ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतेषु साक्षी मात्रतया अवस्थितः, सर्वभूत मणि प्राणी, सभी प्राणियों में गूढ़ है मणि अंतर्यामी रूप से है उसी को साक्षी मात्रतया बोले, सर्वभूत का अर्थ लेते हैं ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत अर्थात ब्रह्मा से लेकर एक कीट पतंग तक, आ ब्रह्म भुवनान लोक ऐसे यहां से लेकर वहां तक, मान जितना भी ये ब्रह्मांड है इन ब्रह्मांड में रहने वाले जितनी भी जीव है इन सब जीवों को सर्वभूत संज्ञा होती है, और इन सब भूतों में कैसे नियम गुण का अर्थ है छिपे हुए है, कैसे छिपे हुए है साक्षी मात्रतया अवस्थित, अर्थात साक्षी मात्र को कोई देख नहीं सकता है, स्वाभाविक रूप से जैसे आग दूसरों को देखती है किंतु आग अपने को देखती नहीं है, मन यहां से लेकर वहां तक हमारी बुद्धि मन मन के द्वारा इंद्री इंद्री के द्वारा आगे जा रहे है लेकिन पीछे कोई दिखते नहीं है, क्यों क्यों उसकी अपेक्षा वो उसकी अपेक्षा अव्याकृत मने गूढ़ है सूक्ष्म है, इस प्रकार परमात्मा सभी भूतों में साक्षी रूप में स्थित होने के कारण वे गूढ़ है, यस्मिन मन जिसमें यस चिद घनानंद वपुषी परे, यस्मिन का अर्थ करते हैं चिद घनानंद वपुषी परे, दो शब्द दे दिए किसके लिए, यस्मिन मनी जिसमें